करें। नमो अरिहंतार्ण नमो सिद्धार्ण नमो आईर्याण नमो वज्जायाण नमो लोये सौवसाहुण एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, चतुर्गति रूप इस संसार में बहुत समय पहले से, जिसका हम अंत पता नहीं लगा सकते, चार गतियों के बीच जो गति अति महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, आदर्श है, सुख के जितने शिखर हैं, सुख के शिखरों को पाने हेतु, पाने के लिए यदि कोई साधना है तो वह साधना आत्म साधना है। संसार में सभी जीवों से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो सभी जीवों का एक ही उत्तर रहता है, हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, निर्विकल्पता चाहिए, हाय हाय त्राय त्राय हमको नहीं चाहिए। और हाय हाय त्राय त्राय यह किस गति में नहीं है, मनुष्य गति में भी है, नरक में तो बहुत ज्यादा है, तिरंश गति में नरक से ज्यादा जरा कम है, और देव गति में मनुष्य गति से ज्यादा है कि कम कहिए। जब भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं देव गति पर आकर के रुक जाता है, लोग उत्तर ही नहीं दे पाते, क्योंकि देवों के दोस्त हैं लोग। देव गति मनुष्य गति से सुख वाली गति माना जाए, या उसमें भी मनुष्य गति की अपेक्षा से मनुष्य गति से ज्यादा दुख है ये कहा जाए, क्या कहा जाए, दुख ज्यादा है। तो सबसे कम दुख किस गति में है, ये यदि विचार किया जाता है तो कम से कम दुख की अनुभूति करने वाले मनुष्य ही हैं, और उसमें ऐसा कौन है उसका चुनाव किया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको शोधा जाए, तो ऐसे कौन आदर्श मानव मिलेगा ऐसा कौन आदर्श मनुष्य हमें मिलेगा जिनके पास दुख कुछ भी नहीं, और मनुष्य है, मानव शरीरधारी है और दुख बिल्कुल नहीं है उनको, ऐसा कौन है? हैं? आप कह सकते हैं महाराज आप ही हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। मनुष्यधारी हम भी हैं और हमारे ऊपर भी और कोई है। वो कौन है? अरिहंत भगवान है। मनुष्य शरीरधारी है क्या? नहीं। मानव शरीर उनको भी है, मानव शरीर मनुष्य को भी है, दोनों मनुष्य गति के हैं। मनुष्य आयु का उदय दोनों को है, और इनके नीचे जो आप लोग हैं, आप भी मानव हैं, मनुष्य हैं। तो शांति की अपेक्षा और सुख की अपेक्षा तुलना करके यदि हम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी गृहस्थ मिलता है। इसके उपरांत दुख को समाप्त करना है और सुख को पाना है, इस प्रकार के मार्ग की साधना करने के लिए जब वह तैयार हो जाता है तो वह मुनियों की कोटि में आ जाता है। और सारे दुख सारी अशांति यदि किसी से मिलती है तो ये तो प्रत्यक्ष बात है कि किस कारण से अशांति होती है आप दिन रात अनुभव कर रहे हैं। आप लोगों को अशांति क्यों है? वो भी मालूम नहीं है तो अशांति, लेकिन हाँ इच्छाएं किसकी प्रति इच्छाएं होती हैं? वस्तु के लिए इच्छा होती है। अशांति का कारण वस्तु है या इच्छा है? इच्छा है। इच्छाएं आपकी समाप्त हो जाए और दुनिया में जो वस्तु हैं वो अपनी अपनी जगह रहे, तो वस्तु दुख का कारण बनेगा क्या, दुख का निमित्त बनेगा क्या? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। वस्तु दुख का कारण नहीं बन सकता। वस्तु दुख के लिए कारण इसलिए नहीं बन सकता कि वस्तु के पास ये ताकत नहीं कि वह आत्मा को प्रभावित करे। प्रभावित होने वाली आत्मा के लिए निमित्त बनकर के काम कर सकता है, लेकिन खुद चल करके वह आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। हमें सुख और दुख ये जो दोनों प्राप्त होते हैं, उसके कारण को हमें भीतर ही ढूंढना पड़ेगा। वो कारण भीतर ही है, बाहर नहीं है। वस्तु दुख का कारण कहेंगे तो मुनि महाराज भी सुखी नहीं हो सकते। क्या हो सकते? वस्तु यदि दुख के कारण है तो महाराज वस्तुओं के बीच में ही बैठे हैं, ऊपर पंखा चल रहे हैं, ये हाल किसका है उसके बीच में हम भी आए हैं चपेट में, तो हमें भी दुख होना चाहिए। इस हाल का कुछ भी हो जाए, मुनि महाराज को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, किंतु यह वस्तु जिसकी है उसके लिए कोई व्यक्ति आकर के यहाँ ये खंभे गिराने लगा, वो दीवार तोड़ने लगा, तो मन में आपको विकल्प होगा क्या? नहीं। और हमको नहीं होगा, क्योंकि वस्तु के प्रति हमारा संबंध नहीं है। हाँ, वस्तु के प्रति हमारा संबंध ही नहीं है तो हमारे लिए न सुख होगा न दुख होगा, किंतु इसको जिसने बांधा है, वो जिसका है, उसके लिए सुख और दुख दोनों होंगे। वह तोड़ रहा था और वो मालिक बाहर से आ गई। तोड़ने वालों की आंखें सफेद हैं लेकिन देखने वालों की आंखें लाल हो जाती है। उनको तोड़ने में आनंद आ रहा है, आंखें सफेद हैं और तोड़ते हुए वस्तु को देख करके आपकी आंखें लाल हो गई। ये किस कारण से लाल हो गई? इच्छाएं हैं, मूल आधार, दुख का मूल केंद्र इच्छा है। इस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा है, इस वस्तु के प्रति हमारा स्वामित्व है, इस वस्तु के प्रति हमारा आधिपत्य है, इसलिए उस आधिपत्य को धक्का लगता है। यह मेरा है मैं इसका हूँ, यह मेरा है मैं इसका हूँ, और ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या रहेगा? ये विकल्प जब आ जाते हैं तो जिसके प्रति आसक्ति है, जिसके प्रति मूर्छा भाव है, जिसके प्रति इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की सुरक्षा के लिए ही हम पुनः प्रयत्नशील हो जाते हैं। ऐसा कोई श्रावक है क्या, सारी दीवारों को तोड़ता हुआ देख रहा है और देख करके यह विचार कर रहा है ये तोड़ रहा है, तोड़ने जिससे कोई मतलब नहीं, हमको तो दीक्षा लेना है, तोड़ रहा है ये तो हमारा है ही नहीं, हमको तो दीक्षा लेने इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई विचार करता है? कोई नहीं करता। और यदि ऐसा करता है तो दोनों की आंखें सफेद रहेंगी, लाल किसी की आंखें नहीं हो सकती। भीतर में उठने वाले विकल्प वो यदि इच्छाओं को लेकर के उठती हैं तो आत्मा और शरीर दोनों तरंगायित होते हैं, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, विदाउट निमित्त के उत्पन्न नहीं होती लहरें, बड़े बड़े लाट आ जाते हैं, विदाउट निमित्त के कभी भी लाट नहीं आते। समुद्र का पानी वैसे स्वभावतः शांत है लेकिन उस शांति में अशांति मचाने वाला निमित्त भी तो है कोई, वह निमित्त अगर उस पानी को मिल जाता है तो वह प्रभावित होता है, अपने आप में रह नहीं पाता। और अपने आप में यदि समुद्र का पानी रहना चाहे रह सकता है, ऐसी बात नहीं कि वह प्रभावित हो ही जाए, एकांत नहीं, जैन धर्म में हर जगह अनेकांत है। प्रभावित नहीं होगा ये कैसे संभव? हवा भी चली और समुद्र का पानी ज्यों का त्यों स्थित है, खिल नहीं रहा है, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये कैसे संभव? कि पानी क्या समझदार है? नहीं, हवा कितना भी चले मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं। लेकिन कहा जाता है पानी भी प्रभावित हुए बिना पर्वत की तरह ठोस वह एक जगह रह सकता है, अचल, इधर का उधर नहीं होगा। लेकिन कब? जब पानी अपनी तरलता को त्याग कर सरलता से अपने तरलता को त्याग कर अपने आप को घनीभूत बनाए, यानी हाँ समझ में आ गया ना, यदि पानी बर्फ बन जाए, समुद्र सारे के सारे बर्फ बन जाए तो कैसा भी लौट आ जाए, कितना भी जोर से हवा चले, कैसे भी भूकंप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। उस पानी में प्रभावित होने की भी शक्ति है तो अपने आप में प्रभावित हुए बिना स्थिर रहने की भी शक्ति है। है कि नहीं
है।
यदि वहाँ है जड़ वस्तु में इस प्रकार की योग्यता है, इस चेतन वस्तु में किस प्रकार की योग्यता रहना चाहिए इसका भी चिंतन करना आवश्यक है क्या नहीं
है।
आज उसी बात को हम सामने रख रहे हैं। ये बात कितनी आवश्यक है, इस बात को सामने रख करके आपको ये कहना है आज के दिन आपका रास्ता कौन सा है, आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, ये सोचना है अपने लिए। आत्मा अनादिकाल से संसारी है, ये तो प्रसिद्ध बात है। आत्मा अनादिकाल से दुखी है, ये भी प्रसिद्ध बात है। आत्मा अनादिकाल से शरीर से सहित है, कर्मों के बंधन से युक्त है, ये भी प्रसिद्ध बात है। और बार बार जन्म व मरण करता है, ये भी प्रसिद्ध बात है। किसको मालूम नहीं, सबको मालूम है। हम सभी मरने वाले हैं, ये किसको मालूम नहीं, सबको मालूम है। लेकिन मरे बिना भी रह सकते हैं क्या नहीं, आत्मा को जन्म मरण न हो ऐसा भी हम हो सकते हैं क्या नहीं, हो सकते हैं। और ऐसा होना है क्या नहीं, पहला ये बताओ। हो सकते हैं, मेरे पूछने से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप सिर हिला करके उत्तर ही केवल नहीं देना, आपको क्या होना है पहला प्रश्न। जन्म मरण से मुक्त होना है कि नहीं, होना है। तो इसके साधना भी तो करना पड़ेगा क्या नहीं, साधना भी करना पड़ेगा। वह साधना जो जन्म और मरण को दूर करने लायक साधना है, उस साधना का नाम ही है धर्म। उसी का नाम धर्म है। धर्म की नई परिभाषा दे रहा हूं, नई परिभाषा कुछ नहीं होती मेरे पास, मैं उल्टा सीधा कर करके उसी को नया बना देता हूं। हर संडे को धर्म की परिभाषा नई मिलती है। एक बार कहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म समझो। और एक बार ये भी कहा था कि अभी तक तुमने जो कुछ किया है उसको अधर्म समझो, अब जो करोगे उसको धर्म समझो, ये भी कहा था। आज क्या कह रहा हूं, जन्म मरण को दूर करने की जो आत्म साधना है वो आत्म साधना ही धर्म है, ये कह रहा हूं। आत्म साधना ही धर्म है, तो वह आत्म साधना किस प्रकार से करे, प्रश्न उठता है। ये प्रश्न केवल आप लोगों के सामने ही है ऐसा नहीं, ये तो मुनियों के सामने में भी है, मुनियों के सामने भी है और अरहंत भगवान के सामने भी है। वो भी मुक्त नहीं है, हम भी मुक्त नहीं है, आप भी मुक्त नहीं है, तीनों के सामने यही प्रश्न है। बात इतनी सी है, एक प्रश्न का हल कर रहे हैं, हल करने में लगे हुए हैं, और एक प्रश्न लगभग हल हो चुका है। अब कुछ समय के बाद जन्म मरण से वे मुक्त होने वाले हैं, एक की ही गंभीर समस्या है, वो किसकी, आप लोगों की। और इसी गंभीर समस्या को हल करने के लिए संडे के दिन आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है, और हर संडे आप लोग इस तरह से इकट्ठा होंगे और सुनेंगे, इस समस्या का क्या हल हम नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं और यही करना है। और लाख बात की एक बात, करोड़ बात की एक बात, अरब बात की एक बात, असंख्यात बातों की एक बात, अनंत बात की एक बात, एक ही बात की साधना करो, तुम्हारे लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। क्या इच्छा निरोधो तपः। असंख्यात बातों की एक बात, अनंत बात की एक बात, जिस कारण से हमारा मार्ग विपरीत बन रहा है, वहीं पर पहले सबसे पहले दुरुस्ती करना है। साइकिल की चेन बार बार गिर रही है, साइकिल पर बैठ करके आप जा रहे हैं, चार कदम जाते हैं बेडशीट पर बैठ जाते हैं, दो ऐसे वो कर देते हैं, पुनः गिर जाती है। वो चेन क्यों गिर रही है, उसका कारण क्या है? लूज होने से चेन नहीं गिरता कभी, लूज होने से चेन गिरता है कहना ये लूज ये हो जाएगा, लूज नहीं है। लूज होने के बाद भी, लूज होने के बाद भी साइकिल पर आप निर्विघ्न रूप से आप जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप घुमा रहे हैं पैडल, उसका एक चक्र होता है, उसका नाम पैडल। फिर व्हील पीछे होता है, आगे का चक्र जो आपके पांव के नीचे जुड़ा रहता है बड़ा, वो क्या है? अगला फिर व्हील कहो या अगला चक्र कहो, कुछ भी कहो, फिर व्हील छोटा होता है और आगे का बड़ा होता है। वो आगे का गिर रहा है, पीछे का तो नहीं गिरता, आगे का बार बार गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? वो चैन ढीला होने से या कुछ कमी है उसमें? कमी अवश्य है। क्या कमी है? वो आउट है। उस आउट को जब तक हम नहीं निकालते, तब तक ये चैन गिरता रहेगा और आप मंजिल पर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच सकते। हमारे पास जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा अवश्य है। इच्छा किसको नहीं, सभी को है। ये है, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, इतना तो कम से कम है। जन्म मरण से हम मुक्त होना चाहते हैं, ध्येय है हमारा पूरा, उसमें श्रद्धा है, ये तो है क्या? नहीं। अगर ये नहीं है तो फिर वेल भी नहीं। ये जो ध्येय है ये फिरवेल है, और हमारे आत्मा में जो लोभ रहित प्रवृत्ति होना चाहिए वो लोभ प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा बार बार जाती है, कषाय करती है, कभी क्रोध कभी मान कभी माया कभी लोभ, बार बार कषाय कर रही है। ये कषाय करने वाली आत्मा भी एक चक्र है, ये अगला चक्र है, और उस चक्र में आउट क्या है? इच्छा। देखो, इच्छा, हम वस्तु से टकराते हैं, वस्तु के पास जाते हैं तो उसके ग्रहण के भाव हो जाते हैं, इच्छा हो जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। कितनी सारी वस्तुएं चाहिए आपको? तीन लोक की संपत्ति भी सामने रखा जाए तो आत्मा यही कहती है, ये तो एक ही लोक दे दिया आपने, एक ही लोक दे दिया, हमको ऐसे 10 चाहिए, और 10 दे दिया, 1000 चाहिए, 1000 दे दिया। इच्छाओं का कोई अंत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आत्मा अपने स्वभाव में न रह करके जब कषाय स्वभावी बनता है, उस समय अपने स्वभाव को छोड़कर जब पर स्वभावी बनता है, उस समय आउट हो जाता है। और वो जो चैन है वो गिरता है। जरूर आपको इच्छा है जन्म मरण से मुक्त होने की, लेकिन इच्छाओं से आत्मा को मुक्त कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, तो आत्मा आउट है। आत्मा आउट है, और ये आउट जब तक नहीं निकालोगे, और आउट किस कारण से है? इच्छा के कारण से। ये इच्छा ही आउट कर रहा है। इस आउट को जब तक नहीं निकालोगे तब तक चैन गिरता रहेगा और आप बेचैन होते रहेंगे। आत्मा भी बेचैन और साइकिल जो चल रही है वो भी बेचैन, चैन के बिना बेचैन, दोनों बेचैन। अब हम पूछ रहे हैं कि साधना किसकी? स्वभाव की साधना। साधना किसकी? तो कहते हैं आत्म स्वभाव की साधना करना। आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रहता है, इसलिए ये बार 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 इसका चैन गिर रहा है, और जब जब चैन गिरता है तब तब बेचैन होता है, अशांति आती है, दुख होता है, उस दुख की अनुभूति वह बार बार कर रहा है। जब आप साइकिल चलाते हैं रास्ते से और बार बार चैन गिरने लग जाए तो आप कितने परेशान होते हैं, कितने परेशान होते हैं, और गुस्सा आ जाए तो साइकिल को उठा के पटक देते हैं, क्या साइकिल ये, परसों ही खरीदा था और चैन गिर रहा है। गुस्सा आता है कि नहीं? साइकिल सफेद ही है लेकिन हमारी आंखें लाल है, हमारी आंखें लाल हो गई, साइकिल जैसे है वैसा ही है। तो आप ये बताएं, आपके दुख के लिए कारण साइकिल है, चैन है, फिरवेल है, कि आगरे का चाक है, कि हमारा दुख का कारण हम ही हैं? हम ही हैं। आपको यदि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के लिए निमित्त बन रहा है वह चैन जो गिर रहा है बार बार, उसको निमित्त बना करके हम गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्से की उत्पत्ति चैन के निमित्त से जरूर है, लेकिन चैन ने क्या आपसे ये कहा कि मैं गिर रहा हूं और तुम गुस्सा करते रहो? कहा क्या? जड़ वस्तु कभी भी आत्मा से ये नहीं कहती कि तुम क्रोध करो, तुम मान करो। मान आता है धन से, छह खंड का महल हो, भरपूर धन हो, तो फिर देखो तो सही कैसे आउट होता है वो चाक। जरा बाहर आ ही जाता है, ठीक से नहीं रहता। अपने आप में रहना चाहिए, आप ही में रहना चाहिए, स्वभाव में रहना चाहिए, स्वभाव में नहीं रहता। धन आ गया ना, फिर रास्ता नहीं दिखता, आकाश ही दिखता है। आउट आता है, और इस आउट को निकालने के लिए जो आता है ना, उसको आप क्या कहते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है तो छाती पर लात मारती है, तो यहाँ फ्रैक्चर होता है, झुक नहीं सकते हम, ऐसा इधर फ्रैक्चर होता है, हम नीचे नहीं देख सकते, ऐसा चलते हैं। और जब जाती है तो पीठ पर लात मार के चली जाती है, तो नीचे मुख हो जाता है। अब बाजार में इधर उधर नहीं देखते, बिल्कुल छोटे रास्ते से गुजर जाते हैं। क्यों सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? ये कहीं नहीं, कहीं यहीं यहीं जा रहे। देखो तो धन जो है, मुनि महाराज जैसे ईर्यापद समी से चलने लगते हैं, ऐसे लगते हैं वो सेठ जी जैसे कि जीवों की रक्षा करते 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 जा रहे हैं, वैराग्य हो गया और कल के दिन दीक्षा लेने वाले, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी दशा होती है हमारी, ये जो दशा है क्यों हो गई? इसमें दो ही कारण हैं, पर वस्तु और हमारी अज्ञानता के कारण से, हम अपने आत्म स्वभाव को न जानने के फलस्वरूप, हमारी अज्ञानता के कारण से हम उस वस्तु को देखते ही विवाह परिणति में ढल जाते हैं। विवाह परिणति में ढलना ही ये आउट होना है। यदि आप आउट हो गए तो चैन गिर गया आपका। शांति का कारण चैन है। अगर ये नहीं गिरता है तो साइकिल पर बहुत आनंद आ रहा है, शांति है, सुख है, मजा आ रहा है, लेकिन वो गिरने लग जाए अशांति हो जाती है। साइकिल को भी दोष देते हैं हम। कैसा साइकिल? पत्थर लेके मारने लगते हैं, थार थार थार, आउट है। आप अपने साइकिल को जैसे पत्थर लेकर के गुस्से में मारने लगते हैं ना, अपने को भी कभी कभी लगता है जो जो इस संसार में आउट हैं, उनके आउट निकालने के लिए कड़वे प्रवचनों के पत्थर को मार मार करके आउट निकाला जाए, ये भाव हो जाते हैं। और कभी कभी कड़वे प्रवचन भी मुनि के मुख से निकल ही जाता है। कौन भाग्यवान? कड़वे प्रवचन करने वाले मुनि महाराज भाग्यशाली या कड़वे प्रवचन सुनने वाले श्रावक भाग्यशाली? लेकिन ऐसा कड़वा प्रवचन करने लग जाऊं तो अगले संडे नहीं आओगे। भाग्यशाली तो कहोगे लेकिन अगले संडे आना बंद कर दोगे, मुश्किल हो जाएगा मुझे। ये आउट निकालना था और साइकिल ही नहीं आया इधर। साइकिल ही नहीं आया, आउट किसका निकालोगे? दुकान नहीं चलेगी, साइकिल दुकान बंद करके घर जाना पड़ेगा। मुनि महाराज दो तरह के प्रवचन करते हैं, मधुर प्रवचन और कड़वे प्रवचन। दोनों आवश्यक है कि एक? दोनों आवश्यक है। कड़वे प्रवचन से कभी श्रावकों को घबराना नहीं चाहिए। असल में लेकिन मुनि महाराज को भी सदा कड़वे प्रवचन ही नहीं देना चाहिए, ये भी है। अब साइकिल के उस चाक पर सदा ही पत्थर से मारते रहोगे तो और आउट हो जाएगा। मारा कब जाता है? जब वह टेढ़ा हो, इस जगह जरा टेढ़ा दिखता है, जरा बाहर भी मारो और जरा अंदर से भी मारो तो लेवल पर आ जाएगा। कड़वे प्रवचन के माध्यम से जब मुनि महाराज किसी श्रोताओं को ठीक करने लगते हैं, उस समय में वो यही अनुभव करते हैं इसको मारना पड़ रहा, नहीं चाहते हुए भी कड़वा प्रवचन देना पड़ता है। लेकिन वो कर्तव्य है, कर्तव्य है। और यह कर्तव्य अस्पताल में भी डॉक्टर का होता है। रोगी का रोग ठीक नहीं हो रहा है तो मीठी गोली देने से कोई फायदा नहीं है, फिनाइल गोली देना पड़ेगा। बुखार उतर नहीं रहा है तो कड़वी से कड़वी गोली देनी ही पड़ेगी, उस गोली से ही ठीक होगा वो। नहीं, वो कड़वी खाता नहीं और दवाई को फेंक करके चला जाएगा, ये कह करके डॉक्टर मरीज के पीठ पर हाथ फेर करके, नहीं आपको कड़वी दवा नहीं दूंगा और तुमको मीठी मीठी दवा दे दूंगा, मीठी गोली, मीठी इंजेक्शन, दर्द भी नहीं होना चाहिए, सुई भी सुई चुभने का भी दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसी औषधि डॉक्टर हमेशा देते हुए बैठ जाएंगे तो क्या समस्या आ जाएगी आपके जीवन में? आप मरण की ओर बढ़ रहे हैं कि जन्म स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे? जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य की ओर बढ़ना है तो दोनों अनिवार्य। डॉक्टर अगर ये कहता है कि कड़वी गोली खाना है तो कड़वी गोली खाना ही है, खाओ। डॉक्टर अगर ये कहता है कि तुमको ये मीठी गोली खाना है, कड़वी की जरूरत नहीं अभी, तो उसको भी खाना ही तो खाना ही है, खाओ। यही साधना है। मोक्ष मार्ग में हमें विवेक का काम लेना चाहिए। ज्ञान हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है? विवेक नहीं है। विवेक रहित ज्ञान वह सारा कर्तव्य करता हुआ भी जहां का तहां बैठा रहता है। विवेक रहित ज्ञान का ज्ञान ही तो आउट ज्ञान है। इस ज्ञान को ही आउट निकालना चाहिए पहले। विवेक रहित ज्ञान सही सोचेगा तो वह इच्छाओं को भी छोड़ पाएगा, सबको छोड़ पाएगा, परिग्रह छोड़ पाएगा, इच्छाएं छोड़ पाएगा। और यह नियम है संसार में, यह सिद्धांत है कि जब तक आप बाह्य वस्तुओं को त्यागते नहीं तब तक इच्छाओं का त्याग करना संभव ही नहीं है। और इच्छाओं का त्याग जब ऐसा करना संभव नहीं है तो सोच लेना चाहिए क्या हमारे लिए शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी आत्मा का चिंतन करने मात्र से। होगी क्या? अनुभव से देखो इसको, जरा डूब के देखो। बाह्य वस्तु के रहते हुए यदि आत्मानुभूति हो जाएगी तो फिर इच्छाओं को छोड़ने की क्या जरूरत, जबकि बाह्य वस्तु इच्छा के कारण से ही होती है। तो इच्छाओं को छोड़ने की क्या जरूरत और वस्तु को छोड़ने की क्या जरूरत? वस्तु और इच्छा दोनों ही रहते हुए यदि हमारे लिए केवल ज्ञान हो जाए तो फिर घर छोड़ने की क्या जरूरत? तीर्थंकरों ने घर त्यागा, परिग्रह त्यागा। क्यों त्यागा? किसको जीतने के लिए? इच्छाओं को जीतने के लिए। हम परिग्रह बाह्य वस्तु जो त्यागते हैं किस उद्देश्य से त्यागते हैं? भीतरी आउट को निकालने के लिए। वस्तु से हम जब तक जुड़े हैं तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती। ये त्रैकालिक सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत। जब तक हम बाह्य वस्तु से जुड़े हैं तब तक इच्छा पर विजय नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इससे भी एक ऊंची बात और कहते हैं तीर्थंकर भगवान। वो ये कहते हैं इच्छाओं से तो आप मुक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, वस्तु भी छोड़ दिया। वस्तु छोड़ दिया तो इच्छाएं रह नहीं सकती, इच्छाओं को तो छोड़ दिया। और इच्छाओं को छोड़ करके आप स्वभाव में नहीं जा रहे हैं, आत्मा में नहीं जा रहे हैं, अपने मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति को धारण करके आत्मा में एकाग्र नहीं हो रहे हैं। तो ये बाह्य वस्तु छोड़ना और उनके प्रति जो इच्छा होती थी उसका त्याग करना ये बिल्कुल व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ है। उसको छोड़ने के बाद इसकी साधना करो, ये कहा। हिलना डुलना नहीं, मन वचन काय की एकाग्रता के काल में केवल ज्ञान होगा या इच्छाओं को और वस्तु को छोड़ करके बैठने मात्र से वो होगा केवल ज्ञान? बैठना पड़ेगा ना, हाँ, गुप्ती धारण करनी पड़ेगी, मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती। ये गुप्ती दो प्रकार की है, एक व्यवहार रूप है और एक निश्चय रूप। व्यवहार रूप जो गुप्ती होती है वो यही है, क्या हम वस्तुओं को छोड़ चुके हैं, इच्छा भी त्याग कर चुके हैं, अब हमारा मन हमारी काया हमारे वचन छोड़े हुए वस्तुओं में छोड़ी हुई इच्छा में अब प्रवृत्त नहीं होगा। ये व्यवहार गुप्ती है, ये व्यवहार गुप्ती है। और इस व्यवहार गुप्ती को धारण करके बैठने मात्र से क्या केवल ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो कहते हैं और क्या करना पड़ेगा? तो आत्मा में लीनता आनी चाहिए, आत्म स्वभाव में रहने की कला अब सीखना चाहिए। एक स्टेप आपने आगे चढ़ लिया, लेकिन दूसरी स्टेप पर ध्यान है, सामायिक है। अब कहते हैं ध्यान का आलंबन लो। लोग क्या करते हैं, ध्यान का आलंबन लो कहने से ध्यान में बैठ जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन पहले स्टेप पर पांव रखे बिना, पहले स्टेप पर चरण रखे बिना दूसरे चरण का अनुकरण नीचे कर लेते हैं, तो इनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी क्या?
नहीं होगी, इच्छाएं नहीं छोड़ी, परिग्रह नहीं छोड़ा। और ध्यान करो करने से, हाँ ठीक ध्यान करते हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे बैठ गए, बिल्कुल काया को एकाग्र कर सकते हो, वचन को भी आप एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन मन रुकने वाला नहीं, कभी नहीं रुकने वाला। और जब आप ऐसे बैठोगे, परिग्रह त्याग नहीं किया है, इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, और ऐसा बैठोगे, शरीर स्थिर है, ऐसा लगता है कि जैसे अरहंत भगवान ही बैठे, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, वचन गुप्ति भी है, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन मन वह रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। जब तक जीवन को इच्छाओं से मुक्त कोई नहीं करेगा, तब तक मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है। मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, मन स्वतः कंट्रोल में आ जाता है। पहले स्टेप पर कदम रख करके देखो तो सही, मन की क्या दशा होती है। और पहला हमारा स्टेप है परिग्रह से मुक्त होना, और इच्छा उन परिग्रहों जिससे मुक्त हो गए, उन्हीं परिग्रहों से इच्छा को रोकना। और ये त्याग के बिना संभव है क्या? वस्तु के त्याग के बिना संभव है क्या? नहीं है। वस्तु के त्याग के बिना कभी भी इच्छाओं को रोकना संभव नहीं है। वस्तु त्याग के बाद ही इच्छाएं रोकी जा सकती है, वस्तु के सद्भाव में इच्छाओं को रोकना कभी संभव नहीं है। कारण ये है कि यदि वस्तु है तो उसके प्रति आसक्ति जरूर है, ये सिद्ध होता है। वस्तु है तो आसक्ति है ही, और आसक्ति को ही इच्छा कहा है। आपके पास वस्त्र है, क्यों है? आसक्ति है। आप आसक्ति को जीतना चाहते हैं तो किसका त्याग करना पड़ेगा? वस्तु का ही त्याग करना पड़ेगा। ये सत्य सिद्धांत है, तीर्थंकरों ने अनादिकाल से इस सिद्धांत को खोज के रखा है, और उन्होंने जो खोजा है उस पर चलने के लिए उपदेश दिया है। ऐसा चलोगे तो ही साइकिल का आउट निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला ये कभी नहीं है। परिग्रह में रह करके हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये कभी संभव नहीं है। आज न कल चाहे करोड़ भव व्यतीत हो जाए, आज न कल उसको त्यागना ही पड़ेगा। प्रश्न आता है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव दो ही प्रकार के हैं। मनुष्य गति की अपेक्षा से दो ही साधक हैं यहाँ, एक गृहस्थ है और एक मुनि है, और इनसे ऊपर देखो तो फिर तो वो तो भगवान हैं, अरहंत हैं। मुख्य रूप से जो साधक माने जाते हैं वो दो हैं, गृहस्थ और मुनि। जरा सोचना है, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, और ध्यान में रख करके आज नोट करके भी ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात मैं कहूंगा, अगले संडे तक चिंतन करके आना उस पर। एक बात लिखाना चाहता हूँ लेकिन कॉपी नहीं है और पेन नहीं, क्या करें आपके पास, लेकिन ध्यान में रह जाएगा। ध्यान में तो रखोगे ना, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बहुत संक्षिप्त, कठिनतम शब्दों का डेफिनेशन लक्षण एक ही शब्द में। आपको श्रावक कहते हैं, श्रावक कहने से पहले आप क्या हैं? गृहस्थ हैं। श्रावक कहलाने से पहले आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ से ही श्रावक बन जाते हैं। श्रावक क्या करने से बन जाते हैं ये देखना है। गृहस्थ इज इक्वल टू कुछ का भी त्यागी नहीं, कुछ भी नहीं त्यागा जिसने, उसका नाम गृहस्थ। गृहस्थ इज इक्वल टू किसी वस्तु का त्यागी नहीं, न अंतरंग त्यागी न बहिरंग त्यागी, इज इक्वल टू गृहस्थ।
ये तो गृहस्थ की परिभाषा हो गई, हमें सबकी बताना है।
चार जगह
श्रावक की परिभाषा अब बता रहा हूं। श्रावक इज इक्वल टू अंतरंग मिथ्यात्व का त्यागी, सम्यक दर्शन का धारी। अंतरंग मिथ्यात्व का त्यागी, सम्यक दर्शन का धारी, बाह्य में अहिंसा का प्रेमी, स्थूल हिंसा का त्यागी। समझ में आया? स्थूल हिंसा और एक सूक्ष्म हिंसा। सूक्ष्म हिंसा को तो नंतर त्याग किया जाता है, स्थूल हिंसा को शुरू में त्याग किया जाता है। श्रावक इज इक्वल टू स्थूल हिंसा का त्यागी बहिरंग में, और अंतरंग में किसका त्यागी? मिथ्यात्व का त्यागी, यानी आठ मूल गुण का धारी और सम्यक दृष्टि। श्रावक इज इक्वल टू आठ मूल गुण का धारी प्लस सम्यक दर्शन का धारी, ये श्रावक की परिभाषा हो गई। अब मुनि की परिभाषा, ये श्रावक की दो कैटेगरियां हैं, उसको भी सुन लेना। एक स्थूल हिंसा का त्यागी होता और सम्यक दर्शन का धारी होता। यहां पर एक दूसरा श्रावक है जो इनके ऊपर के स्टेज पर है, ऊपर की सीढ़ी पर है, उनको नैष्टिक श्रावक कहते हैं। कौन से श्रावक? नैष्टिक श्रावक। नैष्टिक श्रावक निष्ठा के साथ अहिंसा मार्ग पर और भी सूक्ष्मतः कदम बढ़ाने वाला और प्रतिमा धारी। 11 प्रतिमाएं बताई गई हैं जैन धर्म में, दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं से कुछ प्रतिमाओं को या पूरे 11 प्रतिमाओं को जो धारण करता है वह नैष्टिक श्रावक की कोटि में आता है। ये हो गया नैष्टिक। नैष्टिक का क्या क्या त्याग होता है? तो कहते हैं नैष्टिक श्रावक इज इक्वल टू सम्यक दृष्टि प्लस प्रतिमा का धारी, यानी स्थूल हिंसा का भी त्यागी प्लस जितना बन सके उतना सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी, यथा संभव सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी। ये श्रावक की दो कैटेगरियां हैं। अब कौन आ गए? मुनि। अब मुनि आ गए। मुनि महाराज इज इक्वल टू मिथ्यात्व का त्यागी, अंतरंग मिथ्यात्व का त्यागी, अंतरंग परिग्रह है वो, अंतरंग मिथ्यात्व का त्यागी, बहिरंग 10 परिग्रह का त्यागी, दो बातें हो गई। अंतरंग मिथ्यात्व का त्यागी, बहिरंग 10 परिग्रह का त्यागी प्लस इंद्री विजयी, तीन बातें, तीन विशेषताएं मुनि के पास होना चाहिए। हाँ, जिसको भावलिंग और द्रव्यलिंग यथार्थ नग्नता जिसको बोलते हैं, महावीर भगवान ने जिसको यथार्थ नग्न स्वरूप कहा है, वह उसकी विशेषता तीन में है। एक मिथ्यात्व का त्यागी, बहिरंग परिग्रह संपूर्ण का त्यागी, कोई भी वस्तु नहीं रखते और उसके प्रति इच्छा भी नहीं रखते, इसलिए इच्छा का भी त्यागी और परिग्रह का भी त्यागी, इसका त्यागी, मिथ्यात्व का भी त्यागी और इंद्रिय विजयी। चार लक्षण होना चाहिए। मिथ्यात्व का त्यागी, अंतरंग इच्छाओं का त्यागी, बहिरंग वस्तुओं का त्यागी और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं जो, वो अब सोचिए इंद्रियों का विजय, इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए बिना इंद्रियों पर विजय हो सकेगा क्या?
आप जब सामायिक में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, जाप करने के लिए बैठ जाते हैं, तो मन दौड़ता कहाँ है? जिसके प्रति इच्छा है वहीं दौड़ता है, जहाँ के संस्कार है वहीं दौड़ता है। मन इस प्रकार से दौड़ रहा है तो मन का विजय जो नहीं हो सकता है वो इंद्रिय विजय होगा क्या? नहीं होगा। सभी इंद्रियों को जीतना संभव आसान है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। और जो व्यक्ति एक मन को जीत लेता है उनके पांच इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाते हैं। पांच इंद्रियों को जीतना कठिन नहीं है जितना कठिन मन को जीतना, और मन को जीतना तभी संभव है जब वो इच्छाओं को जीत लेता है। इच्छाओं को जीता हुआ व्यक्ति परिग्रह रख नहीं सकता, ठीक है ना? तीर्थंकरों के सिद्धांत बताए जा रहा है आज। असल में जैन मार्ग क्या है, आत्म तत्व की साधना का वह असली मार्ग क्या है, उसका दिग्दर्शन हो रहा है। सही सही दूध का दूध, पानी का पानी छांट करके बताया जा रहा है, परिशुद्ध तत्व सामने रखा जा रहा है। इच्छाओं का निरोध जिसका हो गया है उसके पास बाह्य परिग्रह हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और बाह्य परिग्रह हो और इच्छा न हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य परिग्रह के त्याग के बिना इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं, और इच्छाओं पर विजय प्राप्त किए बिना मन का विजय नहीं हो सकता, और मन को विजय किए बिना पांच इंद्रियों का विजय नहीं हो सकता। ये है ध्यान में रखना आज का प्रवचन, आपको समझ में आएगा सच्चे दिगंबर साधु किस प्रकार के होते हैं। मेरे पास प्रश्न आया, महाराज इस पर ही प्रवचन करो, और मेरा प्रवचन अब शुरू हो गया। द्रव्यलिंग भावलिंग क्या है, असली नग्नता क्या है, दिगंबर साधु में क्या वैशिष्ट्य होना चाहिए जिस कारण से हम उसको परिपूर्ण एक दिगंबर साधु कह सके, यही प्रश्न है। अब जिसका भी प्रश्न हो वो चाहे लिखे, नोट कर ले, रिकॉर्ड हो रहा है उसको लेकर के बार बार सुने, चिंतन मनन करे, और कहीं भी कुछ गुंजाइश प्रश्न अगर उनमें रह गया हो तो आप पुनः इस प्रकार के प्रश्नों को अगले संडे लिख करके लाएं। पहले उसको सुने, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा एक छोटा श्रोता बहुत अच्छा बैठा है वहाँ, मैं यहाँ बोलता हूँ आपको सुनाई देने से पहले वो रिकॉर्ड कर लेता है। आप एक ही बार सुन लेते हैं, लेकिन हमारा श्रोता आपको बार बार सुना सकता है, महाराज ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही कहा, ऐसा समझो, ये बाद में कहता है। आप कह सकते हैं एक भूल गए और एक पकड़ लिया, कुछ नोट कर लिया और कुछ नहीं किया और ले गए, आप भटक सकते हैं, लेकिन मेरा श्रोता वो नहीं भटक सकता। हमारे पहले नंबर के श्रोता को घर ले जाना और इस प्रवचन को 10 बार सुनना, आत्मा की अनुभूति किस दशा में होती है ये भी समझ में आ जाएगा। और निर्ग्रंथ साधु किस प्रकार से बनता है और उनकी आत्म साधना कितनी गहरी होती है, कैसा वो करता है, उनके परिणाम, उनकी प्रवृत्ति, उनकी विचारधारा, उनकी भीतरी साधना, बाहरी साधना किस प्रकार की होती है, ये सारा का सारा सामने आज रखूंगा। एक उदाहरण के माध्यम से चल रहा हूँ। जब भूख लगती है, खाना नहीं मिल रहा है, और आप बाजार में घूम रहे हैं और वहाँ पर फल के दुकान है, तो इच्छा क्या होगी? भोजन, भूख लगी है, घर में तो हूँ नहीं और घर बहुत दूर है, कोल्हापुर आया हूँ, पेट वड़गांव से कोल्हापुर आया हूँ और बाजार में घूम रहा हूँ, क्या खाऊं? समस्या तो आती है। उस समय आप सोचते हैं अनार का फल खाएं तो पेट नहीं भरता, मौसम्बी खाएं तो पेट नहीं भरेगा, 10 खाना पड़ेगा तो भी पेट नहीं भरेगा। क्या खाएं? हाँ, सोच रहे हैं अकेला और दिख रहा है केला, मैं इसी को खाऊं, ये विचार आपको आवे? आवे, केले से ही पेट भरता है। 4 केला भी खा लूं तो 15 मौसमी का रस पीने जैसा है वो। आप सस्ते में देखते हैं क्या खाऊं, जेब में पैसा भी तो चाहिए, सस्ते में उस वस्तु को खरीद लेते हैं। केला खाना चाहते हैं, खाने के लिए आपने खरीदा है, कैसे खाते हो, क्या करते हो पहले? क्यों ऐसा ही खाना चाहिए ना? परिग्रह छोड़े बिना आत्मानुभूति अगर हो सकती है तो भीतर जो केला है, छिलके के भीतर है, उसका असली आस्वाद तो उसी को खाने से आएगा? नहीं, क्या बता रहा हूं, जो भीतर केला है सफेद है, ऊपर तो ये पीला पीला है, भीतर तो सफेद है, उसको खाना है, उसी का केवल हमें रुचि देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? छिलका तो उतारोगे, क्या हो गया? डाउन हो गया, छिलका तो उतारोगे ना? छिलका को उतारोगे, क्यों उतारते हो छिलका? केला ऐसा ही खाओ, स्वाद नहीं आएगा, केला खाने का मजा नहीं आएगा, दोनों खाने से भी पेट जरूर भरेगा, दोनों खा सकते हो, पेट जरूर भरेगा, लेकिन केले का आस्वादन का अनुभूति छिलका सहित खाओगे तो आने वाला नहीं है। अब भीतर के केले को ही खाना है, वही ओरिजिनल आस्वादन हमको चाहिए है, ये कहना है, ये लक्ष्य है, तो फिर छिलके को तो नियम से उतारना ही पड़ेगा। हमको भी यही करना पड़ा, संसार में दर दर भटकते 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 आत्मा के घर से हम बाहर थे, विचार आया आत्मानुभूति तो नहीं हो रही है, शुद्ध आत्मानुभूति कैसे क्या करूं, विचार आया तो ऐसा ध्यान में बैठ जाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं, ध्यान में बैठ जाएगा हो जाएगा सब लोग कहते थे, लेकिन करके देखा आनंद नहीं आया, आनंद जरूर आया, पेट जरूर भरा, बैठने का आनंद तो आया, लेकिन वो जो आस्वादन आना चाहिए वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? मन बार बार जाता है, कहाँ जाएगा? बाह्य वस्तु के पास। आप 108 बार जाप करने के लिए भी बैठ जाते हैं तो जाप नहीं हो पाता, एक बार तो चक्कर लगा करके जाता है, क्या है? 14 राज्य देखा कहाँ आपने? 14 राज्य से तो परिचित नहीं है, आप बताओ स्वर्ग कहाँ है? मन को भेजो और देख कर क्या वो देखेंगे? जिसको नहीं देखा है, शुद्ध परिचिदानुभूता सवसवि, शुद्ध परिचिदानुभूता कौन कौन स्वामी कहते हैं, जो अनादिकाल से हमने जिसको देखा है, चखा है, अनुभव किया है, सुना है, वही बात मन में आती है, जिसको नहीं देखा है वो कभी नहीं आती। 3 लोक में अकृत्रिम चैतालय भी हैं, अकृत्रिम चैतालय अरहंत प्रतिमाएं हैं, नंदीश्वर दीप में पूजा करते हो आप लोग अष्टानिका में, वहाँ कभी मन गया है, दर्शन करके आया है? तीन लोक का चक्कर करके कैसे आएगा, उससे परिचित नहीं है, इस जन्म में उसका परिचय है ही नहीं। इस जन्म में आकर के जिन वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया है वहाँ पर बार बार जाता है हमारा मन। विदित वस्तुषु एव मनोगति, अविदितेषु कदापि न तद्गति। विदित वस्तुओं में ही मन की गति होती है, जिसको वो जानता नहीं है, परिचित नहीं है, उस अपरिचित वस्तु में मन की गति कभी होती ही नहीं। एक बार स्वर्ग जाओ मनुष्य शरीर सहित और इंद्र की सभा में बैठ करके आओ, उनका धर्मोपदेश सुन करके आओ, रोज ऐसा ही प्रवचन होता है, धर्मोपदेश सुन करके आओ और फिर आने के बाद आप ध्यान में बैठो, एक न एक बार स्वर्ग आएगा ही, एक न एक बार इंद्र दिखेगा ही, उनके वचन स्मरण आएंगे ही, वो क्या क्या उपदेश दे रहे थे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ध्यान में बैठो जाकर के। एक न एक बार संडे का प्रवचन और महाराज आंखों के सामने जाप करते समय आएंगे ही। विदित वस्तुषु एव मनोगति, अविदितेषु कदापि न तद्गति। मन की जो गति है, मन का जो गमन है, मन जहाँ दौड़ता है, चंचल होता है, उन्हीं वस्तुओं को लेकर के चंचल होता है जिन वस्तुओं से यह परिचित है। जिन वस्तुओं से यह परिचित है वहीं जाता है, परिचित जहाँ नहीं है वो जा ही नहीं सकता। आप भेजिए देखेंगे, नंदीश्वर देवताओं का दर्शन करके आओ, एक भी मूर्ति आपको नहीं दिखेगी। स्वर्ग के इंद्र को देख करके आओ, इंद्र नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार देख करके आओ और फिर बाद में बैठ जाओ तो सब दिख जाएगा। सपने में भी, स्वप्न में वही वस्तु दिखते हैं जिसको हमने देखा है, कभी न कभी देखा है इन्हीं आंखों से, और इन आंखों से जिसको नहीं देखा है वो कभी नहीं दिख सकता। सिद्ध परमेश्वर कभी दिखे, बोलो नहीं है। अरहंत परमेश्वर दिखे, क्योंकि आपने अरहंत को भी नहीं जाना है और सिद्ध को भी नहीं जाना है, देखा ही नहीं, साक्षात्कार हुआ ही नहीं है। अगर भगवान महावीर होते आज के काल में और इधर महाराष्ट्र में उनका एक बार विहार होता, समोसर में देख लिए होते, तो तब देखने के बाद जाप में बैठ गए होते, तो भगवान महावीर कितने बार आते आपके ध्यान में? ध्यान में तो आते ही हैं, और उनका ज्यादा चिंतन करते करते रह जाओ तो सपने में भी महावीर भगवान आएंगे। जिस प्रतिमा का, जिस मूर्ति का, जिस मंदिर का, जिस गुरु का, जो आपने सुना है, देखा है, देखी सुनी हुई वस्तु ही आने लगती है। इस जीव ने अनादि काल से विषय वस्तुओं को ही देखा है, सुना है, जाना है, अनुभव में लिया है, वही आते रहते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं शुभ परिचिदान भूदा, अच्छी तरह से अनादि काल से विषय कषायों से परिचित है और वो विषय कषाय में ही मन बार बार दौड़ता है, और इन विषय कषायों को त्याग किए बिना कभी भी मन को एकाग्र करना संभव नहीं है, मन को आत्मानुभूति दिलाना संभव नहीं है। तो मैं केले का उदाहरण दे रहा था, समय खिसक जाता है, टाइम कम ही पड़ जाता है, विषय आगे बढ़ेगा, अगले संडे और लेंगे, अभी 10 मिनट है ना, क्या वो घड़ी आगे है, 10 मिनट है, हाँ ठीक है, मैं ले लूँ 10-15 मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, 15 मिनट और ले लेता हूँ। केले खा रहे हैं और अकेले सोच रहे हैं, केले खा रहे हो, अकेले सोच रहे हो, मुझे केला खाना है, छिलका उतार के खाओगे, खा करके आनंद लोगे कि छिलके सहित खाओगे, छिलका उतार करके खाओगे, उसके उससे सहित खाओगे, तो उससे सहित कौन खाता है? इंसान क्या जानवर? जानवर और इंसान, एक पिक्चर भी है, जानवर ही खाता है। छिलके सहित कभी भी आप केला खा नहीं सकते। मुनि के दो लिंग होते हैं, एक द्रव्य लिंग और एक भाव लिंग, छिलका द्रव्य लिंग है और केला भाव लिंग है, छिलका द्रव्य लिंग और केला भाव लिंग, ये दोनों आवश्यक है क्या? नहीं, केले के लिए
अगर छिलका रहित केला खेत में आने लग जाए तो उस केले की क्या गति हो जाएगी? सड़ जाएगा वो, मक्खियां आकर के खाकी चली जाएगी। केला होता है तो उसके दो अंग होते हैं, एक बहिरंग अंग और एक अंतरंग अंग। दो अंग से युक्त को ही हम केला कहते हैं और वो प्रकृति से उत्पन्न होता है पेड़ पर और दोनों रूप ले आता है, वो अपना भीतर को भी ले आता है और बाहर को भी ओढ़ करके आता है। ऐसा कभी हुआ पेड़ पर कि वो गाव तो आया बाहर लेकिन छिलका वहीं रह गया? ऐसा कभी होता है? इस सृष्टि का नियम है दोनों लिंग चाहिए, केले के लिए भी दोनों लिंग चाहिए और आत्मा मोक्ष जाना चाहता है तो उसके लिए भी दोनों लिंग चाहिए। आत्मा आत्मानुभूति करना चाहती है तो दोनों लिंग चाहिए। और ये दोनों लिंग क्या है इसका परिचय मैं संक्षिप्त में दूंगा, 10-15 मिनट में गंभीर बातें आएंगी सिद्धांत की सामने रखूंगा। द्रव्य लिंग का तात्पर्य ये है, द्रव्य लिंग इज इक्वल टू बहिरंग वस्तु का त्याग, एक ही सेंटेंस में परिभाषा दे रहा हूं चिंतन के लिए। द्रव्य लिंग इज इक्वल टू बाहरी वस्तुओं का त्याग, परमाणु मात्र भी नहीं बचाया, अब त्याग करने के लिए बहिरंग में कुछ भी नहीं रहा, इज इक्वल टू द्रव्य लिंग। द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग होगा क्या? नहीं होगा। छिलके के बिना केला होगा क्या? नहीं होगा। छिलके के साथ ही उत्पन्न होता है, दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। जब मुनि बनता है कोई तो मुनि दो लिंग के साथ प्रकट होता है, एक लिंग के साथ नहीं। अगर आप मुनि कहना चाहते हो उसको, असल में मुनि कहना चाहते हो, साधु कहना चाहते हो, तो उनके अंग कितने हैं? दो हैं। रूप कितने हैं? दो हैं। वेश कितने हैं? दो हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग जो रूप है, बहिरंग जो वेश है, वो वस्तु मात्र का त्याग होने से प्रकट होता है। आप क्या समझते हैं? वस्त्र मात्र को त्याग करने से प्रकट होता है, ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब वस्त्र रख करके प्रकट होता है, ये भी नहीं है। हाँ, दोनों तरफ सोचो, वस्त्र रखने से भी द्रव्य लिंग प्रकट नहीं होता, वस्त्र रखने से भी द्रव्य लिंग प्रकट नहीं होता और वस्त्र त्यागने से भी द्रव्य लिंग प्रकट नहीं होता, क्योंकि बहिरंग वस्तु वस्त्र ही मात्र नहीं है, वो 10 हैं। घर, खेत, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी नौकर, दासी नौकरानी, दास नौकर, वस्त्र और बर्तन, ये 10 वस्तु हैं। 10 वस्तुओं को छोड़ करके अन्य कोई वस्तु है क्या देखिए दुनिया में? इन 10 वस्तुओं में सभी शामिल होते हैं और इन 10 वस्तुओं को संक्षिप्त में दो विभाग करके बांटेंगे तो दो विभाग ये हो सकता है, चेतन वस्तु अचेतन वस्तु, जीव सहित वस्तु अजीव सहित वस्तु। जैसे जीव सहित वस्तु गाय, भैंस, नौकर, नौकरानी, मित्र, परिवार, ये सब क्या है? ये चेतन वस्तु। सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, घर, धन, धान्य, ये क्या? ये अचेतन वस्तु। दिगंबर मुनि बनते समय केवल क्या वस्त्र मात्र ही त्याग करने से द्रव्य लिंग प्रकट होता है क्या? नहीं होता। वस्त्र मात्र त्यागी को ही दिगंबर मुनि नहीं कहा, वस्तु मात्र त्याग करने को दिगंबर मुनि कहा। वस्त्र नहीं, वस्तु। और वस्तु दो प्रकार की, चेतन अचेतन। चेतन अचेतन वस्तु मात्र का जो त्यागी होता है वहां पर कौन सा लिंग प्रकट होता है मुनि को?
द्रव्य लिंग, द्रव्य लिंग यानी बहिरंग क्या अंतरंग, बहिरंग, बहिरंग लिंग प्रकट होता है। अंतरंग लिंग कैसे प्रकट होता है तो कहते हैं वस्तु के प्रति जो रागादि भाव होते थे अंतरंग में उनको भी त्यागो। वस्तु को छोड़ रहे हो तो वस्तु के साथ साथ उनके प्रति जो राग आदि भाव होते, इच्छा भाव होती थी, उस इच्छा को भी छोड़ो। इच्छा का त्याग इज इक्वल टू भावलिंग, इच्छा का त्याग इज इक्वल टू भावलिंग, और वस्तु का त्याग इज इक्वल टू द्रव्यलिंग। पुनः कहूं पत्थर गिरा इसलिए उधर गया मन, वो बहुत चंचल है, वो जाता है आता है और उसे ही रह जाता है। बाह्य वस्तु का त्याग इज इक्वल टू वस्तु मात्र का त्याग इज इक्वल टू द्रव्यलिंग। ये छिलका है, वस्तु छिलका है, और इच्छा ये क्या है, भावलिंग है। इच्छा का त्याग इच्छा भावलिंग नहीं, इच्छा का त्याग भावलिंग है, वीतरागता। इच्छा को त्याग करेंगे तो वीतरागता आएगी, वो वीतराग दशा आत्मा की, वह भावलिंग, वह आत्मा का भावलिंग है। ये भावलिंग और द्रव्यलिंग ये दोनों जीवन में आने के बाद ही शुद्धात्मा की अनुभूति हो सकती है, होती है, अन्यथा इससे पहले आत्मा की अनुभूति किसी को होना संभव नहीं है। महाराज जैसे कैसे कहते हो, समय सार में तो ऐसा कहा, समय सार में यही कहा है जो मैं कह रहा हूँ। समय सार में ऐसा नहीं कहा कि छिलका उत्तर वो छिलका उतारे बिना ही केले का स्वाद आ जाएगा, ये तो नहीं लिखा। द्रव्यलिंग धारण किए बिना ही आत्मानुभूति हो जाएगी, ये किसी भी शास्त्र में जैनागम में लिखा नहीं है, लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा, कैसे होगी, आप प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लो, परिग्रह को रखो और मन को कंट्रोल करके बताओ, परिग्रह को रखो और इंद्रिय विजय हो करके बताओ, और ये इंद्रिय विजय मन का विजय ये हुए बिना आत्मा की अनुभूति हो सकती, कदापि संभव नहीं। पर ये भी सत्य है कि द्रव्य लिंग को धारण करने पर यानी बाह्य परिग्रह को त्याग करने पर आत्मा की अनुभूति हो, ये नियम भी नहीं है। क्यों नियम नहीं है, इच्छा भी त्यागा वस्तु भी त्यागा, भाव लिंग भी धारण कर लिया, द्रव्य लिंग भी धारण कर लिया, लेकिन ध्यान में नहीं बैठे, योग धारण नहीं किया, गुप्ति धारण निश्चय गुप्ति को धारण नहीं किया, व्यवहार गुप्ति में ही बैठ गए, तो क्या आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। व्यवहार गुप्ति के बिना निश्चय गुप्ति नहीं और निश्चय गुप्ति के बिना आत्मानुभूति नहीं, व्यवहार गुप्ति के बिना निश्चय गुप्ति नहीं और निश्चय गुप्ति के बिना आत्मानुभूति नहीं और आत्मानुभूति के बिना केवल ज्ञान नहीं, अरहंत अवस्था नहीं, और अरहंत अवस्था के बिना सिद्ध अवस्था नहीं है। हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, कैसे डायरेक्ट यानी वस्तु मात्र परिग्रह को रखते हुए ही, वस्तु मात्र परिग्रह को रखते हुए ही डायरेक्ट अरहंत पदवी पर पहुंचे वस्तु के साथ संभव है। तो केला खाते समय आपने कैसा खाया और आपका पेट भर गया तो तीन चार केले ज्यादा हो गए तो जानवर को भी डाल दिया, जानवर को भी डाल दिया, उसने कैसे खाया और आपने कैसे खाया, फर्क है कि नहीं खाने खाने में, तो उसको क्या रुचि आई उससे पूछो। और भैंस आपसे पूछते तुमको क्या मिला, भैंस आपसे पूछती है तुमको कैसा क्या अनुभव हुआ, तो आप तो भैंस को बता सकते हैं मुझे छिलके का नहीं आनंद आया, छिलके का आनंद नहीं आया, छिलका खाना भी तो एक आनंद है ना, छिलके का आनंद आपको नहीं आया और भैंस को छिलका प्लस केला दोनों का आनंद आया का मतलब प्योर आनंद नहीं आया, दूध प्लस दही इज इक्वल टू दूध, तो क्या दूध प्लस दही इज इक्वल टू दूध इज इक्वल टू मीठा दूध? गणित ऐसा है क्या? नहीं है। गणित कैसा है फिर? दूध प्लस दही इज इक्वल टू मिश्रानुभूति। मिश्रानुभूति अलग है, दही का अनुभव अलग है, दूध का अनुभव अलग है। दूध दूध ही है, उसको मात्र पियोगे तो मीठा लगेगा। दही दही ही है, केवल दही पियोगे तो वो उस रूप में ही लगेगा। दोनों को घटबट करके मिला करके पियो तो इधर दूध का भी स्वाद नहीं आया, इधर दही का भी स्वाद नहीं आया, बल्कि पीते समय ऐसा लगा जैसे वांति हो रही हो, वमन हो, वमन करने को। भगवान तीर्थंकर कहते हैं, आप यदि प्योर फिल्टर शुद्ध आत्मा की अनुभूति और शुद्ध धर्म की अनुभूति आप यदि चाहते हैं तो दो लिंग धारण करो। इसी को कहते हैं दिगंबर जैन धर्म। आप कौन से धर्म के हो? दिगंबर जैन धर्म है ना, है? तो आप दिगंबर है क्या? दिगंबर जैन धर्म का आप अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, क्या आप स्वयं दिगंबर हैं? छिलके सहित केले आप हैं और छिलके रहित अकेले केले मुनि हैं। मुनि में और सांप में इतना ही फर्क है, वो अकेले केले का आस्वादन ले रहे हैं और श्रावक जानवर और इंसान का फर्क है। जानवर और इंसान का फर्क है धर्म के क्षेत्र में। श्रमण अलग है और श्रावक अलग है। श्रमण श्रमण ही है, श्रावक ही है। श्रावक मिक्स अनुभव करता है और मुनि प्योर अनुभव करते हैं। मिक्स अनुभूति एक तीसरी अनुभूति है, न दूध की न दही की, दोनों की मिश्रानुभूति जो है वो तीसरी अवस्था है। उसको अनुभव करते समय वो मिश्र का ही अनुभव होगा, प्योर आत्मा की अनुभूति इस अवस्था में नहीं है। इसलिए प्रयत्न करना है अपने को, क्या हम यदि दिगंबर जैनी हैं तो दिगंबर जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही प्रैक्टिकल का मार्ग हमारे लिए शरणभूत है। तीर्थंकरों ने भी वही किया, चक्रवर्तियों ने भी वही किया, उनके उपदेश अनुसार आज भी दिगंबर मुनि उसी रास्ते से चल रहे हैं, रत्नत्रय का धारी बनकर आत्मानुभूति कर रहे हैं, कर्मों को नाश कर रहे हैं। आत्मानुभूति में जितने कर्म नष्ट होते हैं परिग्रह अवस्था में कर्मों का नाश नहीं होता। दो लिंग को धारण करना पड़ेगा और दो लिंग को धारण करने के पश्चात प्रश्न उठता है ये द्रव्य लिंग किस काम का? तो कहते हैं भाव लिंग की उत्पत्ति के लिए वो कारणीभूत है, इसलिए द्रव्य लिंग को धारण करो। तो द्रव्य लिंग को धारण करने मात्र से क्या भाव लिंग की उत्पत्ति होगी क्या? तो कहते हैं ऐसा गारंटी नहीं दे सकते। इच्छाओं का निरोध भी होना आवश्यक है। किसके प्रति इच्छा? द्रव्य लिंग की उत्पत्ति के लिए। जिन परिग्रहों को तुमने छोड़ दिया उन छोड़े हुए परिग्रहों में कभी भी आसक्ति भाव नहीं होने का नाम द्रव्य लिंग भावलिंग है, भावलिंग है। और आज हम श्रावक ये समझते हैं, शायद अज्ञान में हो, अज्ञानी लोग ये सोच सकते हैं दिगंबर मुनि का मतलब दिगंबर मुनि वस्त्र रहित तो है, हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे महान हैं, इसलिए तो हम झुकते हैं। ये कहते हो कि नहीं? लेकिन इसमें भूल है क्या नहीं ये देखना है, संशोधन कर लेना है। भूल है क्या नहीं? तो क्या भूल है बताओ? केवल वस्त्र छोड़ने से मुनि नहीं बनता। छोड़ने के वस्तु कितने हैं? एक है क्या? दस है? दस है बस, दस है बस। इतना समझ में आ गया ना? इस संडे को इतना समझ में आ गया है तो अगले संडे के लिए हम भूमिका बना करके और रखेंगे और डीप आपको ले जाएंगे। आज इतना ही ठीक है, अधूरा प्रवचन है, प्रतीक्षा करना अगले संडे के लिए।
बोले परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की जिनवानी के लिए खड़े हो। पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन्म लके मल को ज्योति अत काती जिनवानी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे अब तक हम विषयांद रहे।